नमस्कार श्रोताओं, स्पोर्ट्स स्कैन में आपका स्वागत है। आज मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए इस समय हमारे साथ स्टूडियो में हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ गौस मोहम्मद। नमस्कार गौस जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
नमस्कार प्रियंका और सभी को नमस्कार।
और बहुत कुछ रहेगा इस कार्यक्रम में। हम पेरिस ओलंपिक में हमारे शटलर्स की क्या भूमिका है, कौन कौन है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आगाज करते हैं हेडलाइंस से। सुमित नागल स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। नागल एटीपी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 12वीं और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 15वें स्थान पर पहुंची। स्मृति 5वें स्थान पर बरकरार। और भारत के शौर्य बाबा ने अमेरिका के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वाश के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया। सबसे पहले बात टेनिस कोच से। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल एटीपी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 68वें स्थान पर पहुंच गए हैं। नागल को 5 स्थान का फायदा हुआ है। उनकी पिछली सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 71 थी। पेरिस ओलंपिक के पुरुष सिंगल्स में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय नागल के 789 अंक हैं। और नागल स्वीडिश ओपन टेनिस टूर्नामेंट में आज पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। उन्होंने पहले दौर में स्वीडन के एलियास यमेर को 6-4, 6-3 से हराया। नागल पुरुष डबल्स में भी पोलैंड के अपने जोड़ीदार करोल ड्रेजविकी के साथ अपनी चुनौती पेश कर रहे हैं। उनका सामना फ्रांस के अलेक्जेंडर मुलर और लुका वान एश की जोड़ी से है। गौस जी, पेरिस ओलंपिक खेलों से पहले आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ये जीत काफी महत्वपूर्ण है और खासकर रैंकिंग में भी बहुत सुधार हुआ है।
जी बेशक, जहां उन्होंने रैंकिंग में सुधार किया है, बड़े जबरदस्त तरीके से अपने खेल में भी सुधार किया है। क्योंकि देखिए, जब इनका जद्दोजहद संघर्ष से इनका पूरा टेनिस जीवन जो यहां तक है, अभी बहुत युवा है। और अगर इससे पहले हम बात करें 68 रैंकिंग आपने बताया, इससे पहले विजय अमृतराज और आपका रमेश और सोमदेव जो है उनकी बेटर रैंकिंग थी। चौथे ऐसे खिलाड़ी हैं सिंगल में जिनकी बेटर रैंकिंग है 68वीं रैंकिंग में। और जिस तरह उन्होंने सिंगल जीता है, अब उनका मुकाबला मारियानो नोवोन से होगा अर्जेंटीना की। उनकी रैंकिंग विश्व में 29 नंबर के है, तो यानी एक टफ मुकाबला है। यहां वो देखना होगा कि कितने मेंटली टफ हैं उनके खिलाफ जो खेलते हैं। क्योंकि ओलंपिक में केवल एकमात्र चुनौती सिंगल में है वो सुमित नागल के रूप में है। और जिस तरह ये फाइटर हैं, आपको पता भी होगा शायद उन्होंने जूनियर ग्रैंड स्लैम जीता था 2015 में,
बिल्कुल
विंबलडन के अंदर। तो ये वहीं पे इनके सारी चीजें भविष्य की नजर आ रही थी। और यहां भी जिस तरह उन्होंने प्रदर्शन किया, और खास करके एकदम बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे ओलंपिक के पहुंचकर अगर आपकी फॉर्म चरम सीमा पर रहती है तो बहुत अच्छी संभावनाएं भारत को दिखती हैं।
बिल्कुल, इसे ऑस्ट्रेलियन ओपन में भी नागल ने 31वें वरीय जो थे अलेक्जेंडर बुबलिक को हराया था, और जिससे वो 35 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीय खिलाड़ी सीडेड खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए थे। हालांकि अब अगर देखा जाए तो उसके कम्पेटिवली जो स्वीडिश ओपन टेनिस है वो कम थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी अगर 29वें सीडेड खिलाड़ी को भी हराते हैं तो एक आत्मविश्वास और बूस्टअप होगा उनका।
बेशक, और ये सुमित नागल जो हैं वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जब संघर्ष को और जितना तनाव आता है उसको ये बहुत अच्छी तरह से जीते हैं। तो जितना भी बेटर ओपोनेंट होगा उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और मेरे ख्याल से रैंकिंग इसलिए भी प्रियंका आती है कि जितना आप टेनिस खेलते हैं, जीतते हैं, तो अंक जुड़ते हैं।
अब क्रिकेट रैंकिंग पर नजर। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट रैंकिंग में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर 12वें और सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा 15वें स्थान पर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका के साथ हाल में समाप्त हुई श्रृंखला में शानदार प्रदर्शन के दम पर हरमनप्रीत कौर 3 पायदान आगे बढ़ी हैं और शेफाली को 2 स्थान का फायदा हुआ है। शेफाली न्यूजीलैंड की अमेलिया केर और इंग्लैंड की डेनी वाइट के साथ 15वें स्थान पर हैं। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना 5वें स्थान पर बनी हुई हैं और वह भारतीय खिलाड़ियों में शीर्ष पर काबिज हैं। उधर गेंदबाजों की सूची में अनुभवी दीप्ति शर्मा 30वें स्थान पर बनी हुई हैं, राधा यादव 8 पायदान चढ़कर 15वें, पूजा वस्त्रकार 6 पायदान ऊपर 23वें और श्रियंका पाटिल 9 पायदान ऊपर चढ़कर 60वें स्थान पर पहुंच गई हैं। साउथ अफ्रीका के साथ जो भी महिला क्रिकेट टीम की जो सीरीज, चाहे वनडे था, चाहे टेस्ट क्रिकेट था, चाहे T20 था, जो शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जो उनकी जो फॉर्म देखने को मिली है, जो कंसिस्टेंसी देखने को मिली है, बहुत शानदार थी। खासकर अगर मैं स्मृति मंधाना की बात करूं, तो अगर T20 की खासकर बात करूं तो पहले T20 में उन्होंने 46 रन बनाए, दूसरा तो खैर खारिज हो गया था, रद्द हो गया था, और थर्ड में उन्होंने 54 रन बनाए थे। तो बहुत उनकी वनडे में भी कंसिस्टेंसी दिखी थी मुझे, और टेस्ट क्रिकेट में भी दिखी और T20 में भी दिखी।
देखिए उनकी जो खासियत यह है कि उनका टेम्परामेंट एक प्रोफेशनल, अगर मेंस से भी हम कंपेयर करें तो वो इतनी टफनेस है, उनकी एकाग्रता, उनकी कंसंट्रेशन, जब वो फील्डिंग करती हैं, बैटिंग करती हैं, तमाम जगह पे वो एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं। यहां पे हमें दिखाई जरूर दे रही है वो 5वें नंबर पर उम्मीद है कि जैसे जैसे हम क्रिकेट ज्यादा खेलेंगे, आप देखिए कि काफी मुकाबलों में भारतीय महिला टीम जो है ऑस्ट्रेलिया से नेक टू नेक फाइट करती है, साउथ अफ्रीका से भी, तो हल्के हल्के सुधार होगा और जितने ज्यादा मैच खेलेंगे मंधाना जो है अपनी रैंकिंग में अच्छा खासा सुधार लाएंगी।
शेफाली का जैसे उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, वनडे में इतना खास नहीं था, पर टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने जिस तरह से रिकॉर्ड बनाए, स्मृति और शेफाली ने मिलकर जो रिकॉर्ड्स बनाए, और T20 में भी उनका अच्छा था, 18 रन बनाए, 27 रन बनाए, तो कुल मिलाकर अच्छा था। हरमनप्रीत कौर ने भी कप्तान के रूप में अच्छी भूमिका निभाई थी।
देखिए कुल मिला के हमारी टीम ही अच्छी है, ये दोनों मंधाना के अलावा जितने दो भी खिलाड़ी हैं, और टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खेलना एक बहुत बड़ी बात है, और जिस तरह भारतीय महिला क्रिकेट टीम टेस्ट क्रिकेट में प्रदर्शन करती है, क्योंकि उसमें ठहरने की योग्यता होनी चाहिए, तो जाहिर सी बात है आपका टेम्परामेंट गजब का है, आप लंबे समय तक क्रिकेट खेल सकते हैं, विकेट पे टिक सकते हैं, ऐसी जो भारतीय महिला खिलाड़ियों की जो मनोदशा है टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो भी बेहतर है।
और अब बात बैडमिंटन की, जो पेरिस ओलंपिक में शीर्ष भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु की अगुवाई में 7 खिलाड़ी पदक जीतने के लिए कोर्ट में जाने वाले हैं, उन पर हमारे पास एक खास रिपोर्ट है, उनको किस ग्रुप में रखा गया है, क्या संभावनाएं हैं, आइए सुनते हैं सर फिरोजी की ये रिपोर्ट।
पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के 2 ध्वजवाहकों में शामिल पीवी सिंधु के सामने इतिहास रचने का मौका है। अपनी झोली में 2 ओलंपिक पदक के साथ ही 5 अन्य स्वर्ण पदक समेटे सिंधु इस साल हालांकि कोई पदक नहीं जीत सकी हैं। ग्रुप एम में उनके साथ एस्टोनिया की क्रिस्टीन कूबा और मालदीव की फातिमा रज्जाक हैं। उधर पुरुष सिंगल्स में HS प्रणॉय और लक्ष्य सेन चुनौती पेश करेंगे। देश के शीर्ष खिलाड़ी HS प्रणॉय के ग्रुप में वियतनाम के ले दकफाट और जर्मनी के फेबियन रोथ भी हैं। 22 साल के युवा लक्ष्य थॉमस कप और राष्ट्रमंडल खेलों के चैंपियन के रूप में अपना पहला ओलंपिक खेलेंगे। भारतीय बैडमिंटन की सबसे सफल पुरुष जोड़ियों में शुमार दुनिया की पूर्व नंबर 1 सात्विक चिराग की जोड़ी से इस बार पदक की उम्मीद है। उन्हें आसान ड्रॉ मिला है और उनके ग्रुप सी में फजर अल्फिया और मोहम्मद रियान एरदियांतो की इंडोनेशिया की 6 नंबर की जोड़ी होगी। महिला डबल्स की बात करें तो अश्विनी पुनप्पा और तनिषा जोड़ी के रूप में उतरेंगे। तनिषा अश्विनी को पेरिस में मुश्किल ग्रुप सी मिला है। इसमें 4 नंबर की जापान की नामी मत्सुयामा और चिहारू शिदा की जोड़ी के अलावा टोक्यो की कांस्य विजेता दक्षिण कोरियाई जोड़ी भी है। सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
गौजी, सबकी नजरें जो सबसे ज्यादा है वो पीवी सिंधु पर रहेंगी, क्योंकि एक तो इंजरी के बाद उनका कमबैक हुआ और उन्होंने रियो में पदक दिलाया, रजत पदक, और टोक्यो में भी कांस्य पदक दिलाया, तो उम्मीद है कि हैट्रिक लगा दें इस बार पेरिस ओलंपिक में पदक जीत।
मुमकिन है, प्रकाश पादुकोण जो जबरदस्त खिलाड़ी रहे हैं वो उनकी कोचिंग की देखरेख कर रहे हैं, और जैसे 2 बार ओलंपिक के अंदर ये मेडल ले चुके हैं, और आपने कहा हैट्रिक तिगड़ी बनाएगी मेडल में। इंजरी के बाद किसी भी खिलाड़ी का बैडमिंटन में कमबैक करना ये बहुत बड़ी बात है। पीवी सिंधु से हमें बहुत आशा है। इसके अलावा डबल्स में भी साईराज रेड्डी और चिराग शेट्टी से भी बड़ी हमें उम्मीद है, और लक्ष्य सेन जो है अपना लक्ष्य, अपना टारगेट रखते हैं, तो उनसे भी हमें उम्मीद करनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर बैडमिंटन में अच्छी आशाएं भारत को हैं।
बिल्कुल, सात्विक की बात की तो 23 साल के हैं सात्विक और 26 साल के हैं चिराग, और उन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भी स्वर्ण हमें दिलाया। 2022 में विश्व चैंपियन में कांस्य और हांगचो एशियाई खेलों में भी स्वर्ण जीता, और पिछले साल अक्टूबर में दुनिया की नंबर एक जोड़ी बनी थी, और उन्होंने 2022 में ऐतिहासिक थॉमस कप जीत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और अगर देखा जाए तो इस साल जो मलेशिया सुपर 750 हुआ, इंडिया सुपर 750 के फाइनल में भी पहुंची, और फ्रेंच ओपन थाईलैंड ओपन भी जीता।
इसीलिए बहुत आशा है, सायराज रेड्डी और चिराग शेट्टी का टेम्परमेंट इतनी कम आयु में भी बहुत बेहतर है, और डबल्स में अनुभव बड़ा काम आता है, लेकिन क्योंकि बड़ा फास्ट पेस भी होता तो यहां उनकी चुनौती बहुत अच्छी होगी।
अगर एचएस प्रणॉय की बात करें गौर जी, तो उन्होंने पिछले साल जरूर कोपनहेगन में विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, पर अगर देखा जाए तो उन्होंने छठी रैंकिंग भी हासिल कर ली, पर उसके बाद किसी बड़े टूर्नामेंट में चमक नहीं बिखेर सके। एचएस प्रणॉय की जैसे हम बात कर रहे हैं,
प्रणय का जो वियतनाम के खिलाड़ी के साथ मुकाबला है वो भी बड़ा अनुभवी है, पर प्रणय की खासियत ये है कि जब जब प्रेशर और दबाव आता है वो परफॉर्म करते हैं, और इस तरह सारे खिलाड़ी एक दूसरे को कह सकते हैं कि प्रेरित कर रहे हैं। तो ये बैडमिंटन की टीम सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है जो अभी पेरिस में गई है।
जी हाँ, तो बहुत उम्मीदें लगा के बैठे हैं बैडमिंटन में हम और भी खेलों में, तो देखते हैं, बस नजदीक आ रहा है समय, 10 दिन लगभग रह गए हैं शुरू होने में, तो देखते हैं क्या होता है। स्क्वैश की बात करें तो भारत के शौर्य बाबा ने अमेरिका के ह्यूस्टन में विश्व जूनियर स्क्वैश की सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का कर लिया है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल में मलेशिया के लो वासन को 3-2 से हराया। 18 वर्ष के बाबा 2014 में कुश कुमार के बाद सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। करीब 80 मिनट तक चले रोमांचक मुकाबले में वे पांचवें गेम में पिछड़ गए थे, लेकिन उन्होंने शानदार वापसी करते हुए जीत दर्ज की। सेमीफाइनल में बाबा का सामना मिस्र के शीर्ष वरीयता प्राप्त मोहम्मद जकारिया से होगा। और वहीं अनाहत सिंह लड़कियों के क्वार्टर फाइनल में लगातार तीसरे साल हार कर बाहर हो गई हैं। भारत की 16 वर्ष की राष्ट्रीय चैंपियन को मिस्र की नादिया इल्हामामी ने पराजित किया। तो स्क्वैश में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं शौर्य बाबा, हम देख रहे हैं, और बहुत शानदार खेल भी रहे हैं।
जी बेशक, मॉडर्न स्कूल से पढ़े और कोलंबिया में अभी स्टूडेंट हैं, तो इनसे यकीनी तौर पे बहुत उम्मीद है। अनाहत सिंह से भी उम्मीद थी लेकिन वो आज हार गए, तो निराश की कोई बात नहीं। सूर्य बाबा अभी उम्मीद से हैं।
जी हाँ, और कुछ अन्य खेल खबरों पर भी हम नजर डालते हैं। जर्मनी के फॉरवर्ड थॉमस मुलर ने कल अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की। इससे उनके 14 साल के करियर का अंत हो गया। वे 2014 में विश्व कप विजेता जर्मनी टीम के सदस्य थे। इस 34 वर्षीय खिलाड़ी ने जर्मनी की तरफ से 131 मैच में 45 गोल किए। मुलर ने आखिरी मैच यूरो 2024 के विजेता स्पेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल के रूप में खेला था। उन्होंने 4 विश्व कप और इतने ही यूरोपीय चैंपियनशिप में भाग लिया। और एक अन्य खबर है, श्रीलंका क्रिकेट ने शुक्रवार से दांबुला में शुरू हो रहे महिला एशिया कप के दौरान जनता के लिए मुफ्त प्रवेश की घोषणा की है। टूर्नामेंट में 8 टीमें हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मेजबान श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, नेपाल और मलेशिया। टूर्नामेंट में कुल 15 मैच खेले जाएंगे, जिनमें 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल शामिल है। भारत का पहला मैच शुक्रवार को पाकिस्तान से होगा। और एक अन्य खबर है फुटबॉल की, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ FIFF ने कहा है कि खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय संस्था को नीति के तहत हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे, कार्यवाहक महासचिव एम सत्यनारायण और कोषाध्यक्ष कृपा अजय ने कल श्री मांडविया से मिलकर उनसे 4 क्षेत्रों में मदद करने का आग्रह किया था। पहला आग्रह, पुरुष और महिला टीमों के लिए पूरे वर्ष सभी फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैचों की विंडो का उपयोग करने को लेकर किया गया, और सीनियर पुरुष और महिला टीमों दोनों के लिए मुख्य कोच रखने के लिए भी मदद मांगी गई। इसके अलावा महासंघ ने 2024 में होने वाले एशियाई खेलों के लिए पुरुष और महिला फुटबॉल टीमों के अभ्यास शिविर के आयोजन में सहयोग देने का आग्रह किया, और महासंघ ने गोलकीपर अकादमी के लिए भी मदद मांगी। तो ये थी आज की कुछ खेल खबरें। गौसी, आप स्टूडियो में आए और मुख्य खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद।
धन्यवाद प्रियंका।
श्रोताओं, अब समय कह रहा है आपसे अनुमति ली जाए। प्रियंका अरोड़ा और पूरी स्पोर्ट्स कैन की टीम को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।